नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महिलाओं की राजनीति में अधिक से अधिक भागीदारी से देश विकसित बनेगा। महिला आरक्षण से संबंधित संशोधन विधेयक पारित नहीं होने के मुद्दे पर एनडीए नेताओं ने विपक्ष के खिलाफ देश भर में विरोध दर्ज कराया। राज्य के 29 जिलों के 363 पैक्सों में पैक्स अध्यक्ष और प्रबंध समिति के चयन के लिए कल होगा मतदान। और राज्य के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप, रोहतास के डेहरी समेत विभिन्न स्थानों पर अधिकतम पारा 42 डिग्री के पार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश का विकास सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए। श्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की साजिश के कारण 2029 में महिलाओं को आरक्षण देने वाला विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका।
विकसित भारत बनाने में बेटियों की भूमिका का विस्तार हो, राजनीति में भी ज्यादा से ज्यादा बेटियां आए। लेकिन साथियों, आपने देखा है कि संसद में क्या हुआ है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा महिला सशक्तिकरण का पर्याय बन चुकी है, जबकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां महिला विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान इन दलों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ एक उम्मीदवार को खड़ा किया था।
बीजेपी ने देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दी, कांग्रेस टीएमसी ने आदिवासी राष्ट्रपति को पराजित करने के लिए बहुत बड़ा खेल खेला था। यानी ये नहीं चाहते थे कि आदिवासी बेटी देश की राष्ट्रपति बने।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित नहीं होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री चौधरी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरुद्ध मतदान करने वाले दल परिवारवादी हैं और वे आम महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते। पटना में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया होता तो बिहार विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या बढ़कर 122 हो जाती।
बिहार में विधानसभा में मात्र 29 विधायक है माननीय हमारी बहने, और यदि ये बिल पारित हो जाता तो 122 विधायक कम से कम होते, उससे अधिक ही होता। और यदि ये बिल पारित हो गया होता, बिल के माध्यम से 543 सांसद के जगह पर 816 और इसको 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव था, और 816 में से 272 सांसद यदि ये बिल पारित होता तो इस देश में महिलाएं सांसद बनकर देश में राज करने का काम करती। साथ
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अन्य घटक दल महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित नहीं होने के बाद विपक्ष के खिलाफ देशव्यापी विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसी क्रम में आज पार्टी की महिला सांसदों और मंत्रियों ने पटना समेत विभिन्न स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया है। भारतीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने के मुद्दे पर विपक्ष का दोहरा चरित्र सामने आ गया है।
जो दोहरा रवैया है और महिला विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ है। इस देश की नारी को यह भी उम्मीद थी कि विपक्ष के लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस देश की इस आदि आबादी के इस हक को समर्थन देने का काम करेंगे। विपक्ष के इस कृत्य से, कांग्रेस पार्टी के इस कृत्य से उस दिन इस देश की आधी आबादी जिस तरह अपमानित हुई, वो इस देश की महिला कभी भूलेगी नहीं।
महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं होने को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों ने भी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को मिल रहे अधिकार को रोकने का काम किया है। उन्होंने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि चुनावों में जनता उन्हें सबक सिखाएगी।
इस बिल को रोकने में महिलाओं को जो भारत की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी अधिकार देने जा रहे थे, संसद अधिकार देने जा रही थी, इसको रोकने का काम किसने किया? कांग्रेस के लोगों ने रोकने का काम किया, उनके साथ की जो पार्टियां हैं उन लोगों ने रोकने का काम किया। तो टारगेट तो कांग्रेस के लोग होंगे, अभी कहां टारगेट हुए हैं, अभी नाम लेने में ही परेशानी हो रही है। जनता के बीच जाएंगे, जनता दौड़ा दौड़ा कर पूछेगी।
वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि विधेयक को रोककर कांग्रेस ने बड़ी गलती की है। श्री मांझी ने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने महिलाओं का अपमान किया है।
कांग्रेस के लोग अगर चाहते तो बिल पास हो जाता, इसका मतलब कि बिल पास न होने देने में उन्हीं का योगदान है, इसीलिए बार बार नाम ले रहे होंगे, क्योंकि और कोई पार्टी का तो वहां कोई वक्त नहीं था। नेता अपोजिशन वो है तो उनको साथ देना चाहिए था।
इधर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने एनडीए सरकार पर महिला आरक्षण के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में कहा कि लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक नहीं बल्कि परिसीमन विधेयक की हार हुई है। श्री खड़गे ने कहा कि महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से वर्ष 2023 में ही पारित कर दिया गया था, जिसे भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने 30 महीने में ठंडे बस्ते में रखा। वहीं राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि महिलाओं के नाम पर परिसीमन बिल पास कराने का प्रयास विफल हो गया। श्री यादव ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राजद समेत पूरा विपक्ष महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में हमेशा रहा है।
महिला आरक्षण को लेकर के कोई भी विरोध नहीं है, ये तो डिलिमिटेशन यानी संख्या बढ़ाने की बात की जा रही थी सीटों की, और ये सीट वो अपने हिसाब से काटते हैं, तो हम लोगों को समझ में है ना भाई, महिला का विरोध कौन करेगा। हम तो कहते हैं कि महिलाओं को 50% कर दीजिए, लेकिन उसमें से भी ओबीसी महिलाओं को जगह तो दीजिए, आरक्षण में आरक्षण दीजिए। केवल शहर में रहने वाली महिलाएं नहीं, गांव में रहने वाली भी महिलाएं पार्लियामेंट जाए, ऐसा बिल लाइए।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राज्य के 29 जिलों के 363 पैक्सों में पैक्स अध्यक्ष और प्रबंध समिति के चयन के लिए कल मतदान कराया जाएगा। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के संयुक्त सचिव कयूम अंसारी ने बताया कि शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की समस्या होने पर लोग नियंत्रण कक्ष की हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 7979951297। श्री अंसारी ने बताया है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी के कारण 11 पैक्सों का चुनाव फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को आपातकालीन ट्रॉमा सेंटर में 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री सह परिवहन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य दुर्घटना के तुरंत बाद गोल्डन आवर में घायलों को वित्तीय बाधा के बिना त्वरित इलाज उपलब्ध कराना है। श्री चौधरी ने बताया कि राजधानी पटना समेत प्रमुख शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS लागू किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने कहा है कि प्रशासनिक चूक या बुनियादी ढांचे की कमी के कारण एक्सप्रेसवे खतरे का गलियारा नहीं बनना चाहिए। न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी और AS चंदूरकर की पीठ ने कहा कि टाले जा सकने वाले खतरों के कारण एक भी जान जाना राज्य की विफलता दर्शाता है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि शराबबंदी कानून सही है, लेकिन इसे लागू करने का तरीका सही नहीं है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मांझी ने कहा कि इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे राजस्व का फायदा होगा और गरीबों को बेवजह की प्रताड़ना से राहत मिलेगी।
सम्राट जी बने हुए दो चार पांच दिन हुआ ही है, ये लोग आपस में विचार करेंगे, समीक्षा करेंगे, देखेंगे, लाभ हानि के बारे में सोचेंगे, सोच करके निर्णय लेंगे। हमारा जो स्टैंड शुरू से है वही स्टैंड आज भी है कि शराब बंदी कोई खराब नहीं है, नीति ठीक है, लेकिन क्रियान्वयन में गड़बड़ी है, इसलिए समीक्षा करना चाहिए और समीक्षा कर करके शराब नीति पर विचार करना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो गलत हो रहा है उसको ठीक करना चाहिए।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन आज पटना के मां ब्लड सेंटर परिसर में आयोजित विशेष बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अंतिम स्क्रीनिंग शिविर में शामिल हुए। उन्होंने शिविर का उद्घाटन करते हुए कहा कि ऐसे शिविरों के आयोजन से मानव सेवा को प्रोत्साहन मिलता है। तेज पछुआ हवा के कारण राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इन क्षेत्रों में अधिकतम पारा 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि दक्षिण बिहार के अधिकांश स्थानों पर अगले 2 से 4 दिनों के दौरान लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इधर विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, किशनगंज, सुपौल, पूर्णिया, मधुबनी और सीतामढ़ी समेत राज्य के उत्तरी भागों में कई स्थानों पर बारिश की संभावना भी जताई है। अक्षय तृतीया का त्यौहार आज पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार सौभाग्य और सफलता का प्रतीक है। इस दिन सोना खरीदने का प्रचलन भी है। आज भगवान परशुराम की जयंती भी मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर अपने शुभकामना संदेश में कहा कि भगवान परशुराम ने अत्याचार और अधर्म के विरुद्ध अपना जीवन समर्पित किया और समाज में न्याय की स्थापना की। पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संघ का चुनाव परिणाम घोषित कर दिया गया है। वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। वहीं अधिवक्ता जयशंकर प्रसाद सिंह महासचिव और अधिवक्ता पुष्पा सिन्हा कोषाध्यक्ष चुनी गई हैं। इधर सहायक सचिव के तीनों पदों पर महिलाओं ने जीत दर्ज की है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने आज बेगूसराय जिला अतिथि गृह में बेगूसराय न्यायमंडल के न्यायाधीशों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालय संबंधित समस्याओं के निष्पादन के निर्देश दिए हैं। मधुबनी जिले के कलवाही प्रखंड अंतर्गत मधेपुर पंचायत में समझौता बैठक के दौरान मारपीट मामले में पुलिस ने मुखिया, सरपंच समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अररिया पुलिस ने साइबर ठगी के बड़े मामले का खुलासा करते हुए 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों के पास से 5 मोबाइल फोन, 9 एटीएम कार्ड और 22,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महिलाओं की राजनीति में अधिक से अधिक भागीदारी से देश विकसित बनेगा। महिला आरक्षण से संबंधित संशोधन विधेयक पारित नहीं होने के मुद्दे पर एनडीए नेताओं ने विपक्ष के खिलाफ देश भर में विरोध दर्ज कराया। राज्य के 29 जिलों के 363 पैक्सों में पैक्स अध्यक्ष और प्रबंध समिति के चयन के लिए कल होगा मतदान। और राज्य के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप। रोहतास के डेहरी समेत विभिन्न स्थानों पर अधिकतम पारा 42 डिग्री के पार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।